नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज आपको अलग लगेगी क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आज जो है मुझे थोड़ा सा ठीक लगा और मैंने सोचा कि शायद जो काम मैंने अधूरा किया छोड़ा हुआ है उसे पूरा करें। एपिसोड नंबर 2 आज की कहानी, क्योंकि मुझे फीडबैक्स भी मिले हैं इसमें और उन फीडबैक उसके साथ साथ कुछ सजेशंस जो कि मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा, और सजेशंस के साथ साथ मुझे एक रिक्वेस्ट, 2-3 रिक्वेस्ट भी मिली हैं कि मैं उस टॉपिक पे आपको कहानी सुनाऊंगा। अगली कहानी मेरी ज़रूर उसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, लेकिन उससे पहले आज की कहानी हम ख़त्म करें। और कहानी शुरू करने से पहले, जैसे कि रिवाज है, आज की एक क्विक न्यूज़ अपडेट। और न्यूज़ अपडेट ये है कि स्पेशली आज खुशी का मौका है उन लोगों के लिए जो स्पेस, नासा, इसरो और ये सब जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हैं। मुझे वो टेक्निकल वर्ड नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन जो कि है, अगर आप एलियंस और प्लैनेट, रॉकेट और कुछ ऐसी चीज़ों पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वो ये है कि आज नासा का जो है वो उनके सैटेलाइट से कुछ 91 आवर्स में, 91 घंटे में 1600 से ज़्यादा, मोर देन 1600 ऐसे सिग्नल मिले हैं जो किसी एलियंस के हो सकते हैं। जी हाँ, अब ये बात जो है वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी भी खबर है, क्योंकि इवन ऑल जो कि आप अगर हमें देखें, हमारे जो हिस्ट्री है उसको देखें, कि हमने जो कांटेक्ट करने की कोशिश की है कोई मिल गया, फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ रियल, जो कि हमने कोशिश करी है उससे। और बहुत अच्छी खबर है क्योंकि 91 आवर्स के अंदर अंदर मोर देन 1600 सिग्नल रिवर्ट होना एक स्पेस के एक कोई सर्टन इलाके से, एक सर्टन पॉइंट से, जो कि नासा ने जो है वो बताया है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल ये थी आज की खबर, और चले चलते हैं अपनी कहानी की ओर, दत्त साहब की ओर। दत्त साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगत सिंह जी और बाकी जो राजगुरु, इन लोगों को जो फांसी की सजा हुई 23 मार्च को, उसके बाद बट्टू केशवर दत्त चले गए सेलुलर जेल अंडमान, काफ़ी कुख्यात और बहुत ही ज़्यादा अराजकता उसमें, और काफ़ी सारे हैनस चीज़ें होती थी वहाँ सेलुलर जेल में। लेकिन जब बट्टू केशवर दत्त को ये पता चलता है कि उनके जो अजीज़, उनके जो दोस्त, उनके जो सहपाठी भगत सिंह, इन्हें जो है फांसी का फरमान जारी हुआ है, इनको फांसी होने वाली है, तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट समझने लगे, अनलकी समझने लगे। क्योंकि इनका ये एक था कि जब मैंने भगत सिंह जी के साथ में मिलकर अगर मैंने असेंबली में बम फोड़ा है तो मेरी सज़ा क्यों इतनी कम और उतनी क्यों, उन्हें क्यों फांसी मिल रही है और मुझे क्यों नहीं, ऐसा बीके दस सोच रहे थे। हालांकि जब सज़ा मुकम्मल हो जाती है भगत सिंह जी को, तो उन्हें वो लेटर लिखते हैं भगत सिंह अपने दोस्त को, अपने यार को, और वो उस लेटर में उनको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप क्रांतिकारी हो तो आपको शहीद ही होना हो, मतलब ये ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं है कि अगर आप क्रांतिकारी हैं तो आपकी जो आपका एंड पॉइंट है वो आपका मौत ही रहे, या तो आप देश के लिए मर जाए या तो फांसी में लटका दी, ये ज़रूरी नहीं। आपको, मतलब भगत सिंह ने जी ने दत्त साहब को कहा था कि आपने जिंदा रह के ये बताना है कि हम जो क्रांतिकारी हैं वो मौत को गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी भी सजा हम ले सकते हैं, हम इसे सरवाइव कर सकते हैं देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, एक 23 साल के लड़के राइट 22-23 इयर्स, इनकी सोच इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि आप मतलब आप और मैं कहीं नहीं ठहरते इन इन सब के सामने। बहरहाल जब बीके दत्त साहब को ये जब लेटर मिला उन्होंने बोला, तो उनके अंदर एक काफी यू नो जैसे कि मैंने बताया कि उनके वर्डिंग पिन पॉइंट होते थे भगत सिंह को, जब उन्होंने वो ये लेटर पढ़ा उन्हें मिला, उनको ये चीज की मतलब जो अंदर गिल्ट था कि वो उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाया गया बीके दत्त साहब को, वो अचानक एकदम उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्रांतिकारी क्यों फांसी पे चढ़े, क्रांतिकारी तो जेल के अंदर की जेल की किसी अंधेरी कोठरी में बंद करके भी अपनी सजा इवन अपने देश के लिए लड़ सकता है, उन्होंने वैसा किया। बहरहाल बीके दत्त साहब की जंग जो थी वो जारी रही। उसके बाद दत्त साहब को 1937 में बांकीपुरा कारागृह, ये पटना में स्थित है, यहां पर ले जाया गया और 1938 आते आते इनकी रिहाई भी कर दी। अब क्योंकि उनको टीबी हुआ था सेलुलर जेल में, उस वजह से उनकी थोड़ी सी जो तबीयत थी वो ठीक ठाक नहीं थी। बहरहाल जैसे ही वो 1938 में रिहा हुए, वो तुरंत गांधी जी के सपोर्ट में चले गए, उनके साथ असहयोग आंदोलन जो है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और बिल्कुल थके नहीं, इवन दो यू नो टीबी होने के बाद तुरंत वो जाके उनको पता चला कि नहीं अभी गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, हमें इसे जुड़ जाना चाहिए। वो जुड़ गए और फिर वहां पर असहयोग आंदोलन में भी उनकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उससे पहले भी वो गिरफ्तार हुए थे, इस बार भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ठीक चार साल बाद मतलब 1945 को उनको रिहा कर दिया गया और जो अपना मुल्क है इंडिया उसको आजादी मिली 1947 को। और इसी साल 1947 को बीके दत्त साहब उन्होंने भी शादी कर ली। सारी चीजें जो भी उन्होंने देश के लिए करी वो आखिरकार एक सुखद अंत के तरफ आकर ठहर गई, देश आजाद हो गया, उन्होंने अपने दोस्त खोए, बहुत ऐसा कुछ काम किया रिवोल्यूशनरी जो कि बिल्कुल भी रिकग्नाइज था, लोगों के जहन में था। और उसके बाद 1947 में जब वो अपनी शादी करते हैं, उसके बाद उनका सामना हुआ उस चीज से जिस चीज के बारे में उन्होंने शायद ही सोचा हो या शायद ही कोई कल्पना करे, इवन और आप और मैं भी, राइट? क्योंकि मैं जैसे जैसे बताता ना आपको कि किस तरीके के हम लोग हैं, आप और हम भारत के लोग, कि हम कैसे, ताजुब होता है मुझे इस चीज को देखकर, इस चीज को इनकी कहानी को सुनकर। मैं इमोशनली अभी हो मतलब मैं आपको इमोशनली ये बात बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने कहानी सुनी थी इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि 1947 में जब दत्त साहब अपने शादी करते हैं, एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, उस आज़ादी के लिए जी उन्होंने इतना सब कुछ झेला, जब अपने परिवार पालने की बात आई, जब अपने परिवार को संभालने की बात आई दत्त साहब को, तब उन्होंने एक सिगरेट एजेंट का काम किया, जो एक सिगरेट बेचने वाला एजेंट होते हैं ना, उनका काम किया। कहीं जगह खबरें ऐसी भी थी कि मजदूरी की, मतलब 1947 के बाद जैसे कि आप देखेंगे काफी सारे जो नेता थे जो फ्रंट लाइन पे थे, राइट, नरम दल वाले, उन सबको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला उन सब चीजों को, लेकिन जो एक्चुअल में जिन्होंने छोटी बहुत, अब किसी एक की आजादी तो थी नहीं, पूरे मुल्क की थी, सबने एक साथ कंट्रीब्यूट किया था ना। और जैसे कि राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सब का खून है इस मिट्टी में शामिल, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सब का खून है इस मिट्टी में शामिल, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। वो जो लाइन एग्जैक्ट जो उन्होंने कही राहत साहब इंदौरी साहब ने, वो इस बात को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी मैच हो रहा है, क्योंकि जब एक क्रांतिकारी एक रिवोल्यूशनरी अगर आपके देश के लिए आपके देश के आजादी के लिए लड़ने वाला एक आदमी जिसे हम क्रांतिकारी कहते हैं, अगर आप उसे उसी देश में अगर आप उसे सिगरेट बेचने के लिए आप मजबूर करें या आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करें या आप उसे एटलीस्ट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ कुछ भी हो सकता है यार, आप उन्हें गवर्नमेंट
जॉब दे सकते थे, आप उन्हें कोई कुछ अच्छा काम कर सकते थे, आप स्कूल स्कूल्स में आप उनको मौका दे सकते थे, वो बच्चों को पढ़ाते, लेकिन नहीं। बीके दत्त साहब की जिंदगी उन्होंने सिगरेट बेचने से शुरू की अपनी जो मैरिड लाइफ है वो आजाद मुल्क में। उसके बाद एक दिन उनको पता चला कि बस परमिट, जो बस के जो परमिट है ना उस टाइम पे जो ना जो था एट टेम्पररी दाम, वहां पर बस के परमिट जो है वो कुछ जारी होने वाले थे, तो उसी सिलसिले में ये पहुंच गए कमिश्नर के पास, बीके दत्त साहब। तो जो पटना के जो कमिश्नर है उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप अपने क्रांतिकारी होने का प्रूफ बताएं, आप बताएं कि आपने भगत सिंह के साथ मिलकर उस असेंबली में बम फेंका, वो आपके साथी थे और आपने जो सेलुलर जेल है उसमें आपने सजा काटी देश के लिए। कितनी अपमानजनक बातें, आप दो मिनट के लिए आप उस इंसान की जगह पर रहने के लिए सोचें कि अगर आपकी खुद की औलाद अगर आपको ये कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया तो आपको क्या लगेगा, क्या आप समझेंगे इस चीज से, राइट? और वहीं दूसरी ओर जो दत्त साहब हैं उनको ऐसा कहा गया कि आप अपने जो है प्रमाण बताइए, प्रूफ बताइए हमें कि आप क्रांतिकारी थे। जब ये बात पता चली, आग की तरह फैली, और यहीं पे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो अपने देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस स्टोरी को सुना कि ऐसा कुछ हुआ है पटना में दत्त साहब के साथ, तो उन्होंने तुरंत उस एसपी को लिखा, उनसे माफी मांगने के लिए कहा, दत्त साहब से, कि आप जाएं और उन्हें माफी मांगे और उनको जो भी हेल्प आप कर सकते हैं आप कीजिए, जो भी है। उसके बाद ये सारी चीजें उनके साथ हुई, बहुत डिस्टर्बिंग। 1964 में अचानक दत्त साहब जो है वो बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद उनके बारे में एक लेख छपा था उस जमाने में। उनके एक बहुत ही अजीज दोस्त थे चमनलाल आजाद, उन्होंने एक लेख लिखा था, क्या दत्त, बीके दत्त जैसे इंसान को, बटुकेश्वर दत्त जैसे इंसान को इस भूमि में जन्म लेना चाहिए? क्या बटुकेश्वर दत्त इस धरती के, इस देश के, जहां पे आजादी के बाद उनके साथ इतना कुछ भेदभाव हुआ, क्या वो डिजर्व करते थे यहां पर बर्थ लेना? क्या वो इस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते थे जो कि हमने उन्हें दिया आजाद भारत के, आजाद भारत में? ये जो इमोशनल लेख था वो बहुत लोगों को झंझोड़ के रख दिया उस जमाने में। तो ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने बटुकेश्वर दत्त की जो है वो कहानी उनको फैलाई, उन्होंने हर जगह जो है लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस चीज का कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ हिसाब, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से, मुझे ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्यादा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। 1947 में आपका देश आजाद हुआ है, आप अगर 64 में किसी को कहेंगे कि आप रिकॉग्नाइज होने वाले, तो ये बहुत, मैं तो कहूँगा शर्म की बात है, क्योंकि इतने साल गुजर गए आपने कुछ नहीं किया। बहरहाल उस टाइम के जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे गुलजारी लाल जी नंदा, तो ये और एक जो पंजाब के जो मंत्री हैं भीमलाल, इनकी मुलाकात होती आजाद से, उनके दोस्त से, चमनलाल आजाद से, वो सब बातें करते हैं, वो सब उन्हें बताते हैं कि ऐसी उनकी कंडीशन है, और वो बेहद नाजुक कंडीशन में 1964 में पंजाब, सॉरी बिहार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। बीके दत्त साहब कोई पूछने वाला नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके देश का क्रांतिकारी है, आप उसे एक बेंच में, गवर्नमेंट बेंच में एक कोना पकड़ा देते हैं, उससे कोई पूछताछ नहीं, कोई सीएम विजिट नहीं, कोई बड़ा मंत्री आकर उनसे मिलता नहीं। बहरहाल उनकी मुलाकात होती है और वो जब उस सीरियसनेस के बारे में बताते हैं चमनलाल जी आजाद, बटुकेश्वर दत्त के साथ जो भी हो रहा है वहां पे, तब वहां आनंद फानंद में जो है सरकार जो है वो हरकत में आती है बिहार की, कब? जब पंजाब सरकार 1,000 रुपए का चेक जो है वो लिखती है बिहार सीएम को और कहती है उनसे कि अगर यहाँ बिहार में अगर उनका बटुकेश्वर दत्त जी का इलाज नहीं हो रहा है ठीक से तो आप उन्हें दिल्ली भेजिए या चंडीगढ़ भेजिए। अब यहां पर मुझे एक डाउट ये आता है कि चलो आपने मदद करी वो तो ठीक है, लेकिन आपने 1,000 रुपए का चेक जो है वो बिहार सरकार के नाम पे क्यों लिखा? क्यों आप सीधा जाकर समक्ष रहकर आप बटुकेश्वर दत्त जी से मिले, क्यों नहीं आप मिले और क्यों नहीं आपने उन्हें अपने हाथों से वो राशि दी? भले ही वो एक हेल्प हो लेकिन आपने इस चीज को देखिए उस टाइप पे, मैं मुझे तो नहीं पता इनके बारे में महसूस, लेकिन मैं एक अब क्योंकि ये चीज कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई तो मैं मेरा एक अनुमान है कि शायद इसमें भी एक पॉलिटिक्स होगा उनका, राइट? अपने यहां तो फैशन है ना ये सब चीजों का। सो बहरहाल उन्हें आनंद फानंद में जो है बिहार सरकार जो है वो हरकत में आई, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्हें जो कुछ भी हेल्प कर सकते उन्हें किया, उसके बाद उन्हें ले जाया गया 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लेके चले गए। अब वहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में उनका एडमिशन हुआ और वो वहीं पे थे। इसी दरमियान मीडिया वहाँ पे पहुंची, पत्रकार वहाँ पहुंचे बीके दत्त साहब के पास, उन्होंने उनसे पूछा। सो बीके दत्त साहब का मैं स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। बीके दत्त साहब का ये कहना था कि मैंने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी अपाहिज की तरह इस दिल्ली के एक अस्पताल में पड़ा रहूंगा जिस दिल्ली की असेंबली में मैंने मेरे मित्र भगत सिंह के साथ इस देश के लिए वहां पर असेंबली में बम फोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सुनकर हर कोई जो है वो समझता है कि कितनी सीरियस बात उन्होंने कही है और कितने मुश्किलात थे उनके लिए, बीके दत्त साहब के लिए। बहरहाल सफदरजंग अस्पताल में ही उनका जो है वो कैंसर डिटेक्ट होता है। कैंसर जो है वो आपको तो पता ही है कि बीमारी ठीक होने से रही, और वो जो तब के जो सीएम थे रामकृष्ण वो आए उनसे मिले, पंजाब के जो सीएम थे रामकृष्ण बीके दत्त साहब से मिले, उनसे बात करी, उनसे हालचाल लिया, और तभी बीके दत्त साहब ने उनसे कहा कि उनकी अंतिम इच्छा ये है कि वो भी अपने जो मित्र हैं भगत सिंह उनके समाधि के पास ही उनका देह संस्कार हो। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बीके दत्त साहब ने कहा था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं मेरे दोस्त मेरे अजीज दोस्त भगत सिंह के समाधि के पास ही जलना चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा ये है, क्योंकि मैं मुझे जिन जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, मैं मौत के वक्त उनके साथ तो नहीं था लेकिन मैं समझूंगा कि मैं उनके जहां पर भी वो हैं भगत सिंह मैं वहीं पे जाऊं, आप मेरा जो है आप कृपया करके मेरा जो देह संस्कार है वो भगत सिंह के जहां पर उनकी समाधि है उन्हीं के बाजू में किया जाए। बहरहाल 17 जुलाई को बटुकेश्वर दत्त जो है वो कोमा में चले जाते हैं और 20 जुलाई को ठीक रात के 1:50 में वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अब इनकी जो अंतिम जो इनकी इच्छा थी वो पूरी की जाती है। पंजाब में एक जगह है हुसने वाला, वहां पर भगत सिंह जी राजगुरु और सुखदेव की जो है समाधि है और उसी के पास जो है बटुकेश्वर दत्त को देह त्याग उनका जो है वो अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब उनके जो परिवार वाले नज़दीक वाले जितने भी लोग थे उनके आंखों पे एक ही सवाल था कि क्या हमने बटुकेश्वर दत्त के साथ इंसाफी की। इवन मैं आपसे पूछता हूँ एज अ इंडियन, क्या हम बटुकेश्वर दत्त जी के साथ इंसाफ कर पाए? क्या हम इस तरह के लोग हैं कि हम भूल गए हैं कि जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल बट्टू केशवर दत्त, उनको जब उनका अंतिम संस्कार करते हैं तब वहीं पे कुछ जो लोग खड़े थे उनके मन में एक पुरानी कहावत जो है वो सुनने को मिलती है, वो और वो कहावत यह है कि जीते जी को मांड नहीं और मरे हुए को खांड। और ये बात सोलाने सच है, बट्टू केशवर दत्त जी के जो उनकी लाइफ जर्नी रही है वो उसमें। बहरहाल आज हम 2022 में हैं और आज भी इवन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 20 जुलाई को हम उस शख्स को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए जिन्होंने इतना रिवोल्यूशनरी काम किया था अपने इस देश के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि शायद उनका औदा उतना बड़ा नहीं रहा उस दौरान जहां पे गांधी जी और नेहरू जी और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो बड़े बड़े लीडर सामने आकर के जो है वो देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी हमें या आप में, आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप ऐसा बिहेवियर करें उस रिवोल्यूशनरी इंसान के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने परिवार का ना सोचते हुए इस देश के बारे में सोचा। बहरहाल आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो है शायद बीमारी ने बट्टू केशवर दत्त को जो है वो मारा हो, लेकिन हम उन्हें याद ना करके उन्हें भूल के आज हम उन्हें मेरे ख्याल से हर रोज मारते हैं। ऐसे इंसान को जिसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, अपने देश के बारे में पहले सोचा। बहरहाल 20 जुलाई को उनका जो है वो डेथ हुआ। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि 15th of August हमको आज़ादी एक्चुअली में मिली लेकिन इसकी जो नींव थी वो 18 जुलाई को थी। उसके दो दिन बाद ही बट्टू केशवर दत्त की मौत हुई। जी हाँ, 18th of July को एक्चुअली जो सारा चीज़ था होना था, अगर 18th of July को साइन हो जाता उस 1947 में, अगर 18th of July को माउंटबेटन साइन कर देते तो आज हमारा जो इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को नहीं होता, वो 18 जुलाई को होता। और 15 अगस्त को जो है वो, अगर मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊं तो आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा, माफी चाहूंगा, मैं आपका थोड़ा सा मैं ले रहा हूं लेकिन फिर भी ये जो चीजें मेरे ख्याल से आपको शेयर करनी चाहिए। 15th of August को अंग्रेजों ने भारत को आजाद, क्योंकि आपके मन में ये सवाल होगा तो उसका आंसर ये है कि 15th of July को ही अंग्रेज जो थे ना वो थोड़े मतलब भाई साहब वो बहुत ही विजनरी थे, समझ रहे हो। अगर आप वो डिवाइड एंड रूल, उसके बाद अगर आप साइकोलॉजिकल दबाव अगर आप बताना चाहे या ये हिंदू मुसलमान करना चाहे, इन सब चीजों में वो बहुत आगे थे अंग्रेज। अब क्योंकि उन्होंने अपनी हार नहीं माननी थी, पता है आपको एक चीज, मैं आपको एक मतलब एक तकरीर बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने 15th of August को हमें इसलिए चुना भारत को आजाद होना बिकॉज ऑफ कि 15th of August ही वो डेट है जब वर्ल्ड वॉर टू टोकियो ने मतलब जापान ने अंग्रेजों के सामने और जो भी उनके जो अलायंसेस थे, राइट, यूके, यूएसए और ये बाकी के जो देश है फ्रांस वगैरह, इनके सामने अपने घुटने टेके थे, सरेंडर किया था। और ये जो था वक्त, ये बहुत खुशी का वक्त था। और उस वक्त जब टोकियो ने अपने हथियार डाल दिए थे तब माउंटबेटन ही उस जो ये है असेंबली उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने 15th of August इसलिए वो डेट चुनी ताकि उनको ऐसा लगे कि उन्होंने भारत को आजाद तो कर दिया है लेकिन उसका उनको ऐसा नहीं कि गम ना हो, उनको ऐसा लगे कि यार चलो 15th of August एक ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छा ही दिन था। वो डोमिनेंस करना चाहते थे दरअसल। ये थी 15 अगस्त की कहानी और 18 जुलाई की कहानी। 18 जुलाई को अगर होते तो हम और आज जो है आप और हम 18 जुलाई को हमारा तिरंगा यू नो हम होस्ट कर रहे होते कहीं पे। बहरहाल ये थी कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे हमने भुला दिया गया, इतिहास के पन्नों ने कभी उसके साथ इंसाफ नहीं किया ना हमने किया। लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए जितना भी हो सके इस कहानी को, और देखते रहे सुनते रहें क्राइम फ्लिक्स। और आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।